أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قرآن مجید کی یہ آیت مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی ہے. اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم نے اور آپ نے جو موضوع قرار دیا ہے وہ ہے خطبہ شعبانیہ. خطبہ شعبانیہ خود اپنے طور پر منحصر بے فرد خطبہ ہے, وہ واحد خطبہ ہے کہ جو جامعیت پر مبنی ہے. البتہ جو اہل ذوق اور شوق ہیں اول خطبے سے آخر خطبے تک اگر ملاحظہ کریں تو اس خطبے میں مادیت سے بحث نہیں, نہ حور سے بحث ہے, نہ غلمان سے بحث ہے, نہ جنت کی نہروں سے بحث ہے, نہ جنت میں ملنے والی غذاؤں سے بحث ہے. اگر تذکرہ ہے تو صرف اور صرف روحانی پرورش کا, روحانی غذاؤں کا. وجہ ہے اس کی وہ واحد وجہ کہ جو ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے کہ خطبہ شعبانیہ مقدمہ ہے کسی مقام پر وارد ہونے کا. اگر مقام کی نسبت ہمیں اور آپ کو معرفت ہو تو مقدمے کو سمجھنا آسان ہے. مقدمے کی اگر نوعیت معلوم ہو جائے تو مقام بھی آسان ہے, لیکن بسا اوقات مقدمے کی نسبت سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں ایسا ہے. جواب میں کہا جاتا ہے جلدی مت کرو, جس کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے, جس کے لیے مقدمہ ہے وہ آنا چاہتا ہے, وہ خود بتلا دے گا مقام کہ مقدمہ ایسا کیوں ہے. انسان طبیعتاً جلد باز ہے, یہ ہم نے اردو زبان میں آپ کو منتقل کیا. خود خداوند عالم قرآن مجید میں صاف اور شفاف اور واضح انداز میں کہتا ہے کہ اس انسان کو خلق کیا گیا طبیعتاً جلد باز. یہ جلد بازی ہماری اور آپ کی نگاہ میں نگیٹو ہے, اس لیے کہ جو ہم اور آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں تو ایک دوسرے کی نسبت اس وقت کے جب کوئی جلدی سے عجلت کے ساتھ کام کو انجام دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں جلدی مت کرو. جلدی کرنا, عجلت سے کام لینا شیطان کا کام ہے. خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو خود کا خلقت میں تیری اے انسان عجلت رکھی ہے, और हमारा और आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि उजलत शैतानी अमल है। अब क्या होगा? उजलत अगर शैतानी अमल है तो खुदावंद आलम को हमारी और आपकी खिलकत में इसे जगह नहीं देना चाहिए थी। क्यों ऐसा है? इस क्यों का जवाब तवज्जो है। माह मुबारक रमजान माह नुज़ूल कुरान है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहि अल-कुरान। कभी हमने और आपने जो है गौर करने की कोशिश की है कि शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहि अल-कुरान यानी क्या? तर्जुमे से तो वाकिफ है, बच्चा भी बतला देगा। जो जरा सा शऊर रखता है और इस किस्म की महाफिल में शिरकत करता है मालूम है उसे। मगर ये भी कोई सवाल हुआ कि इस आयत के माना क्या है? अक्सर मतालिब ऐसे हैं कि जिसमें तवज्जो की जरूरत है, और वो भी वो मतालिब कि जो रोज़े रोशन की तरह वाजे है, सिर्फ तवज्जो दरकार है। कुरान मजीद जहां जहां इंसानों की सिफतों को बयान करता है वहां पर एक सिफत उजलत से काम लेना है। अब ये सिफत नेगेटिव है या पॉजिटिव? हमारा और आपका तसव्वुर यह है कि नेगेटिव। खा आराम से काम करो, जल्दी नहीं, लेकिन तवज्जो अगर हो कि जिसका फिरदान है तो हमें और आपको जो है ये मुअम्मा हल होता हुआ नजर आएगा कि उजलत जहां हम शैतानी अमल ख्याल करते हैं वहां इलाही अमल भी है। हक खुदा की तरफ से है और बातिल इंसान की जानिब से। रिवायात के दरमियान रिवायात मौजूद हैं इसी हवाले से कि जब नेक काम करने का वक्त आए और इरादा करो तो कर गुजरो कबलज इसके कि रुकावट पर रुकावट आए। अगर खुदा ने हमें और आपको साहिब उजलत करार ना दिया होता, साहिब सुस्ती करार दिया होता, साहिब ताखीर करार दिया होता कि हर काम में ताखीर, निल्ला बतलाइए कि हम और आप कार्य खैर को अंजाम देने में उजलत दिखाए या ताखीर, ताखीर से काम लेते। इन्हीं रिवायात के दरमियान इसका रीजन भी बयान किया गया, अगर काराए खैर को अंजाम देना मकसूद है फौरन अंजाम दे दो, इसलिए कि ऐ इंसान तू नेक काम अंजाम देने की निस्बत मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर सुस्ती का वजूद है, और जब तू गुनाह करने पर आता है सोचता नहीं है, चार्म है उसमें, कशिश है, फौरन। का शैतान यही चाहता है, नफ्से अम्मारा के हाथ को हाथ में लेता है और इंसान से ये कहता है कि इस काम को अंजाम ना दे, बहुत जल्दी है। मगर दुआए सबा को हम फरामोश कर गए, रोजाना पढ़ी जाने वाली दुआ बादस नमाज सुबह, मौलाए कायनात की मुनाजात सुबह के औकात में, दो दुश्मनों देरीना दुश्मन है इंसान के, एक शैतान और दूसरा नफ्से अम्मारा। का शैतान तन्हा काम नहीं करता, शैतान नफ्से अम्मारा का हाथ थामता है। नफ्से अम्मारा उसकी मदद करता है, दोनों मिलकर इंसान के लिए हलाकत का सामान फराहम करते हैं। कबारे लाहा, इन दो दुश्मनों से मैं तेरी पनाह मांगता हूं कि अगर आजाद छोड़ दिया इसके हाथों, शैतान और दूसरा नफ्से अम्मारा, बर्बाद हो जाऊंगा। इंसान साहिब उजलत है, लेकिन हमें और आपको समझने की जरूरत है। ये अगर उजलत ना होती तो हम और आप बहुत सारे वो काम के जो हमारी और आपकी जिंदगी के लिए जरूरी हैं वो अंजाम ना देते। नतीजतन क्या होता, ताखीर की सूरत में वक्त गुजर जाता, जो फायदा पहुंचने वाला था वो नहीं पहुंचेगा। शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहि अल-क़ुरान, माहे मुबारक रमजान वो ज़र्फ है कि जिसका मज़रूफ कुरान है। थोड़ा सा आज इस पर गुफ्तगू हो जाए और उसके बाद खुतबाए शाबानिया का वो हिस्सा कि जो बरकत के हवाले से है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी कि हम अपनी जिंदगी में बरकत को अगर पाना चाहें और एहसास करना चाहें तो किस तरह से। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहि अल-क़ुरान, माह मुबारक रमजान वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। दूसरे अल्फाज में गौर कीजिए, खुदा ये कहना चाहता है कब माह रमजान को अगर अजमत मिली तो जानते हो किस वजह से, कुरान के नुजूल की वजह से। हमारा और आपका तसव्वुर क्या है, माह रमजान को अगर अजमत मिली तो रोजों के वाजिब होने की बुनियाद पर, ये कहते हैं फर्दन फर्दन अगर जो है सवाल कर लिया जाए का माह रमजान कौन सा महीना है, कब रोजों को वाजिब किया गया उसमें। बस माह रमजान बुलंदी का हामिल है रोजों के वाजिब होने की बुनियाद पर, जबकि खुदावंद आलम उसके नजदीक मफहूम कुछ और है, तसव्वुर कुछ और है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहि अल-क़ुरान, माह मुबारक रमजान की फजीलत को जानना चाहते हो, कुरान का नुज़ूल है। रोजों को वाजिब होना फिर क्या हुआ, कब रोजों को इफ्तिखार करना चाहिए कि उसे ऐसा ज़र्फ़ मिला कि जिसमें खुदावंद आलम का कलाम नाजिल हुआ। असल मतलब यह है, मामला हमारे नजदीक बरअक्स है कि रोजे अगर वाजिब हुए माह रमजान में, लिहाजा माह रमजान को चार चांद नहीं, चार चांद इसको लगे हैं रोजों को माह रमजान की बुनियाद पर। ये रोजों को इफ्तिखार करना चाहिए कि उसे जगह दी गई माह रमजान में, वरना खुदावंद आलम 11 दूसरे महीने भी थे उसमें भी जगह दे सकता था। ये हकीमाना नुक्ता हमें और आपको जो है तवज्जो की जरूरत है। किस लिए, काए इंसान है रोजेदार, अगर तू रोजा रख रहा है तो उससे मुतालबा किया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, और ये मुतालबा उसका ज़र्फ माह रमजान अगर है तो याद रख रोजेदार खाली जाहिरी दहन को बंद नहीं करता बल्कि मुख्तलिफ दूसरे दहन को भी बंद करता है। लेकिन ये दूसरे दहन उस वक्त बंद होंगे कि जब ए इंसान तेरी तवज्जो होगी कुरान के ज़र्फ की निस्बत। कुरान कलाम हक है, जहां कलाम हक होता है बातिल नहीं होता। تو اس سے اس مقام پر اس ظرف میں روزے کا مطالبہ کیا گیا ہے، ماہ رمضان کی عظمت اور چار چاند نزول قرآن کی بنیاد پر بہت توجہ مطالب ہوں، اور تجھ سے اسی ظرف میں روزے کا مطالبہ کیا گیا ہے، بس اپنی عظمت کو یاد کر کے خداوند عالم تجھے عظیم قرار دینا چاہتا ہے، کیوں کر روزے کو افتخار ملا ماہ رمضان سے، روزے دار بھی صاحب افتخار ہے ماہ رمضان سے، کیوں؟ اب آئیے خطبہ شعبانیہ، ایوہ الناس، تین دن سے جو ہے اسی پر رکے ہوئے ہم، ایوہ الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگوں یقین جانو کہ یقین ہے تمہاری جانب پیش قدم ہو رہا ہے اللہ کا مہینہ، تین چیزوں کے ساتھ، برکت، رحمت، مغفرت۔ آئیے ملاحظہ کریں برکت کو، ہماری اور آپ کی زندگی برکت سے بھرپور ہے یا زحمت سے بھرپور ہے؟ برکت ہماری اور آپ کی نگاہ میں کیا مفہوم رکھتا ہے؟ برکت ہمارے اور آپ کی نگاہ میں مفہوم ظاہری طور پر اضافہ، ایک کمرے کا مکان ہے، دو کمرے کا اگر ہو گیا ماشاءاللہ، تین کمرے کا مکان ہو گیا، وسیع و عریض محل ملا ہے ہمیں اور آپ کو، تام اور آپ جس کے پاس یہ موجود ہے یا ہمارے پاس موجود ہے جو ملاحظہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ماشاءاللہ کیا برکت ہے، بینک بیلنس آج کم ہے کل زیادہ ہے پرسوں اور زیادہ ہے، کہاں ماشاءاللہ صاحب برکت ہیں، اولاد نہیں ہے ہونا شروع ہوئی، ایک دو تین ماشاءاللہ، نہیں ہو رہی تھی تو نہیں تھی، اب کیا ہے، کب آئے سے برکت، اولاد کا ہونا، کفلا صاحب کون ہیں، با برکت، کہا کیوں اولاد زیادہ ہے، ایک کلاس پڑھی، دو کلاس پڑھی، تین کلاس پڑھی، میٹریکولیشن کیا، آگے گئے آگے گئے، کہا ماشاء اللہ، کیا واقعی جو ہے ہمارے اور آپ کا جو مفہوم، جو ہمارے آپ کے نزدیک جو مفہوم ہے برکت کا، خدا رسول اور ائمہ طاہرین کے نزدیک بھی یہی مفہوم ہے؟ نہیں معلوم، اگر جاننا چاہیں تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، کہے عزیز تو غافل ہے، تو غافل ہے اس چیز سے کہ جسے برکت تصور کر رہا ہے وہ زحمت ہے بسا اوقات، برکت کی جو میننگ ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے معرف قرآن، معرف احادیث، علماء نے جو تفسیر کی وہ بہت واضح ہے، برکت یہ نہیں کہ ظاہری زیادتی اور حقیقتاً زحمت، برکت یہ ہے کہ ایک کمرہ ہو دو یا تین کمروں کے برابر کام دے، برکت یہ نہیں کہ ایک کمرہ دو کمرے تین کمرے، बरकत यह है एक कमरा उस वसी वारीस घर के मुकाबले पर कि जो किसी काम का नहीं है। इस एक कमरे में सब कुछ है, सब कुछ तो है। वो जो होना चाहिए ये बाएं से बरकत है। उम्र बाबरकत किसे कहा जाता है? हम और आप ये कहते हैं एक शख्स 30 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का, 100 साल का अगर दिखाई दिया माशाल्लाह, क्या उम्र बाबरकत पाई है। बरकत ये नहीं, 30 साल अगर किसी को मिले 60 साल का काम कर जाए, 50 साल अगर किसी को मिले 100 साल का काम कर जाए, ये बरकत है। मगर हम और आप मिसालें नहीं सुनते हैं, क्यों गौर नहीं करते? उलमा के दरमियान मुलाहिजा करें, आम अफराद के दरमियान भी मिल जाएगी मिसालें। उलमा के दरमियान में बरजस्ता सर फहरिस्त मिसाल अल्लामा मजलिसी की। उम्र कम है, काम ज्यादा है, कहिए कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? नामुमकिन है। कहां मुमकिन है? कैलकुलेट करो। उम्र 70 साल की कुछ कम या ज्यादा और काम 120 साल का, अजब नहीं? और वो भी उस दौर में कि जिस दौर में वसाइल ये नहीं थे ऐशो इशरत के। इसे थोड़ी सी देर के लिए मैं कहूंगा ऐशो इशरत। खुदा ने हुज्जत तमाम कर दी हमारे अपने जमाने में, कहा ऐ इंसान तुझे काम करने के लिए तेरी ही जरिए से मुख्तलिफ वसाइल को आमादा किया है मैंने, क्यों अपने आप को जाया करने पर तुला हुआ है? मुलाहिजा कर अल्लामा मजलिसी को, शेख तूसी को, अल्लामा हिल्ली को, ये उलमा है। तो जैसा ही इंसान बतलाए देता हूं कि रातों रात 100 साल का सफर तय करते हैं, कबारेला इसे क्या कहते हैं? कहा इसे कहते हैं बरकत। 70 साल की उम्र है, 140 साल का काम कर जाए, खुद इस वक्त भी मौजूद है। हमारे साथी में से एक उस्ताद मौजूद है, खुदा अंदाज़ा उनकी हयाती तुला नहीं करे। खुद डॉक्टर ने उनसे ये कहा, थोड़ा सा आर्जा लहाक हुआ, डॉक्टर के पास गए, कहा जनाब आपने अपनी उम्र से 30 साल ज्यादा काम किया है। कहा बस है, अब काम मत कीजिएगा लिखने पढ़ने का। कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। हमने और आपने अपने अतराफ में मादियत का हिसार इतना तंग किया हुआ है कि हमें और आपको सामने की चीज दिखाई नहीं देती। इस मादियत के हिसार को कैसे तोड़ा जाए? या अय्युहल लजीन आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लजीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। मादियत के हिसाब को तोड़ना है, रोजा रख। बेचारा हो चुका है, रोजा रख। बेचारा हो चुका है, मेरे अहकाम की तामील कर। बल्ला क्या होगा? कहा मैं तेरे हिसार को तोड़ दूंगा जो तूने अपने हाथ से जो है बांधा है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम। खुदा रोजे के जरिए से क्या चाहता है? तकवा। बारहा सुनते हैं, कहा मौलाना कोई दूसरी बात नहीं है आपके पास? कहा दूसरी बात हो तो मैं कहूं ना, इसलिए आपको सुनने में जहमत होती है कि आप समझते नहीं। समझते इसलिए नहीं कि मादियत का हिसाब दर हिसाब है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इस आयत को भी हम बार बार सुनते हैं कि तुम में सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा मुकर्रम खुदा के नजदीक वो है कि जिसका तकवा सबसे ज्यादा है। खुदा हमारे और आपके हिसार को तोड़ने के लिहाज से मुसर है। काय अजीज, एक मर्तबा एक कदम आगे बढ़ा, मैं 70 कदम आगे बढ़ाऊंगा, 10 कदम कम है। का अजीज क्या करेगा तू हमारे साथ? का तूने मुझे अजीज कहा है, सुन मैं तुझे अपने जैसा करार दूंगा। कल और परसों की गुफ्तगु कर याद हो, 11 महीने मादियत के हिसार में, एक महीना रूहानियत, आजादी दर आजादी। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जानता है मेरी सिफात के दरमियान एक सिफत है, मैं हूं साहिब करामत यानी करीम, जाती करामत का हामिल हूं, जाती बुजुर्गवारी का हामिल हूं। चाहता है करीम होना, कौन इंकार करेगा हमें से? अगर अभी निदा आ जाए कि निदा मुसलसल आ रही है, जरूरत है बातनी कान को खोलने की, थोड़ा सा तवज्जो करें, निदा को सुनेंगे। मुमकिन नहीं मुनादी खामोश हो जाए, खुदा का हुक्म है निदा देता रहे। उलमा इस जहत से मुख्तलिफ गुफ्तगु करते हुए नजर आते हैं कि जिसका महसल यह है, काय इंसान मुसलसल आवाज गूंज रही है, ए बंदे आ जा। तूने कभी लब्बैक कहा है? लब्बैक तो वो कहता है जो सुनता है। तू अगर सुने तो लब्बैक कहेगा ना। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम निदा है, निदाए इलाही का। तुम्हें सबसे ज्यादा बुजुर्गवार खुदा के नजदीक वो है कि जिसका सबसे ज्यादा तकवा हो। मैं हूं करीम, चाहता हूं तुम्हें करीम करना, होना चाहोगे? का कौन होगा अहमक होगा जो इनकार करेगा? का एक काम अंजाम दे, तकवा। तकवा के स्टेज हैं, याद रखिएगा अजीजों, मुझे इसमें गुफ्तगू नहीं करना, मुझे आगे जाना है थोड़ा सा, बात आइए सुनते जाइए। तकवा के स्टेज हैं, उन स्टेज का अगर अंदाजा लगाना चाहें तो ईमान के दराजात का अंदाजा लगाइए। हम और आप अक्सर सुनते हैं कि जनाब सलमान फारसी ईमान के आखिरी दर्जे पर। हमने और आपने कभी जो है सोचा है, कभी जाना है और जानने की कोशिश की है कि वो आखिरी दर्जा क्या है? हम यही सुनते हैं खाली कि ईमान के दराजात 10, आखिरी दर्जा सलमान फारसी उस पर फाइज। ईमान का आखिरी दर्जा जब सलमान फारसी को मिल जाए, अभी मालूम नहीं कौन सा दर्जा है वो, तो अमीरुल मोमिनीन कहां जाएंगे? अमीरुल मोमिनीन कहां जाएंगे? सलमान फारसी की क्या हैसियत अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले पर? हिच। जिसने हाथ पकड़कर उसे बुलंद किया हो, उसकी क्या हैसियत? जनाब सलमान फारसी आखिरी दर्जा, खत्म है दर्जात सलमान फारसी पर आकर, अमीर मोमिन कहां गए फिर? अमीर हैं ये मोमिन है, वो अमीरुल मोमिनीन है। लेकिन याद रखिएगा अजीजों, तकवा के अपने दराजात, ईमान के अपने दराजात, ईमान का आखिरी दर्जा रिजा और तस्लीम का है, सुनते जाइए। علامہ مجلسی نے ایمان کے چیپٹر میں 10 درجوں کو بیان کیا ہے. چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام. ایمان کی تعریف کی درجات کے حوالے سے کہا. جانتے ہو ایمان درجات کے لحاظ سے اس کی مثال کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ کہا سیڑھی کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہا اس کے اسٹیپ کو ملاحظہ کیا ہے؟ کہاں ملاحظہ کیا؟ کہا ہر اسٹیپ ایک درجہ ہے ایمان کا. کہا مومن درجہ بر درجہ آگے بڑھتا ہے, یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جو رضا اور تسلیم کا درجہ ہے. تقویٰ کے درجات کو اگر اندازہ کرنا مقصود ہو تو ایمان کے درجات کو ملاحظہ کیجیے. پہلا اسٹیپ ایمان کا, پہلا اسٹیپ تقویٰ کا, دوسرا یہاں پر بھی دوسرا, یہاں تک کہ 10 پہنچ گئے اوپری منزل پر. خدا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے ذریعے سے یہی بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اپنے لحاظ سے حساب مت کرو, میرے لحاظ سے حساب کرو. کہ میں ہوں کریم, مطلق کرامت میرے پاس ہے. چاہتے ہو کریم ہونا, ایک کام انجام دو. کہ اپنے آپ کو صاحب تقویٰ قرار دو. کہ جتنا تقویٰ آئے گا اتنی کرامت میں تمہیں دوں گا, اتنی عزت میں تمہیں دوں گا. دوسرے درجے پر عزت بالا تر, یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچو گے کہ جو تقویٰ کا آخری درجہ ہے. اب اس مقام پر آ کر مولا کائنات سے دریافت کیا گیا کہ تقویٰ کی آخری حد کیا ہے, تو کہا تقویٰ کی آخری حد اسٹارٹ ہے ورع کا. اب کہاں جائیں گے؟ کسی نے سوال کیا تھا 2 دن پہلے ہم سے اسی حوالے سے, اور اکثر و بیشتر ہمارے اور آپ کے پاس سوالات ہوتے ہیں اس قسم کے. اگر ہم اور آپ غور کرنا شروع کریں, ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ظاہری طور پر اعمال انجام دے کر پہنچ گئے. نہیں عزیزوں, نہیں پہنچے, ابھی آغاز ہے, مقدمہ ہے. خدا چاہتا ہے پہنچانا, لیکن جو وہاں پہنچتا ہے وہ پھر رکتا نہیں ہے, مسلسل حرکت پر ہے, مسلسل. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون یعنی صاحب کرامت ہونا. کون ہوگا ہم میں سے صاحب ذلت ہونا پسند کرے گا کوئی؟ سب کے سب چاہیں گے صاحب عزت ہونا. روزہ ہمارے اور آپ کے لیے عزت آور ہے اگر کوئی سمجھے, لیکن ایک شرط ہے. وہ ایک شرط کیا ہے؟ کہ اس دہن کو بند کر دے, مختلف دوسرے دہن باز ہوں گے. کم مشکل تیری انسان یہ ہے کہ تو نے اس دہن کو کھولا ہوا ہے, اسے بند کر دے. وہ دہن کہ جو 11 مہینے بند رہا بیچارہ, اسے کھلنے کی اجازت دے. وہ کون سا دہان ہے دوسرا؟ کہ تو نے اپنی روح کو اس دہن کو باز کر کے بیچارہ قرار دیا ہے. اب خدا یہ چاہتا ہے کہ تجھے اپنے جیسا قرار دے, اور خدا کی نسبت اگر ہم اور آپ چاہیں کہ اس جیسے ہو جائیں, تو خدا بند عالم کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ جو کل عرض کی میں نے, وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے. ماہ رمضان نہ کھاتے ہیں ہم اور آپ کہ کھاتے ہیں کم, نہ پیتے ہیں کہ پیتے ہیں کم. نیند معلوم ہے, اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے ماہ رمضان میں. خدا कहता है मगर गौर नहीं किया तूने, मैं सोता हूं, माहे रमजान रोजेदार सोता नहीं है, वो मालूम है हमें और आपको। अब जो है हमें और आपको खुद जो हिसाब करना होगा कि हम और आप सोते नहीं हैं तो क्यों सोते नहीं हैं। लेकिन खुदा बंदे आलम जो बेदारी हमसे और आपसे मांगता है वो अपने जैसी, कि कल आखिर गुफ्तगू में हमने अपनी खिदमत में अर्ज किया कि जनाब दाऊद पर वही आई निस्फ शब का ए दाऊद, और आलम क्या था जनाब दाऊद का महब खाब का ए दाऊद, ये कैसी रस्म बंदगी, मौला जाग रहा है और बंदा सो रहा है, कहीं देखा है मौला खाता नहीं तू क्यों खाता है। आइए जाहिरी रोजे से हटकर बातिनी रोजे की तरफ जाएं। हमने अब तक जाहिरी रोजा रखा, बातिनी रोजा रखें। ये बातिनी रोजा क्या है आज पहली मर्तबा सुना, कहा सिर्फ इसे बंद मत कर, हाथों के जो है मुंह को भी बंद कर दे, पैरों के मुंह को भी बंद कर दे, फिक्र के मुंह को भी बंद कर दे, हर वो फिक्र कि जो तेरे जहन में आए उस पर अपने आप को मशगूल मत कर। रोजा खाली भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं, हां है तो फिर क्या करना चाहिए, कहा इन हाथों को भी भूखा और प्यासा रख। हमने कभी सोचा है, बाकी बातें इंशाल्लाह आइंदा, बातें बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ ये तज़क्कुर है आपके लिए और नसीहत है मेरे लिए कि हम अपने आप को माह रमजान में कैलकुलेट करें, 11 महीने क्या खोया और क्या पाया। माह रमजान हिसाब किताब का महीना है, खुदा चाहता है हमें और आपको रोजे के जरिए से परवाज देना, परवाज मुमकिन नहीं जब तक परवरिश ना हो। कोशिश करें अपनी परवरिश करने की, जो अपनी तरफ तवज्जो देता है वो आकिल है, जो अपनी तरफ तवज्जो नहीं देता वो दीवाना है। कोई भी हम में से और आप में से नहीं चाहेगा कि वो दीवाना कहलवाए, सब के सब चाहेंगे अहले दानिश करार पाए, और इसके लिए तवज्जो की जरूरत है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, आइए खुदावंद आलम से दुआ करते हैं, बारिल्लाह हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, आमाले सालिहा बजा लाने की तौफीक अता फरमा, बारिल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, बारिल्लाह हम सब की जानो मालो इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, उलमा फुकहा व मराजे इज़ाम की हिफाजत फरमा, खुसूसन मकाम मुअज़्ज़म रहबरी आगा खामेनेई और आगा सिस्तानी की हिफाजत फरमा, तूले उम्र अता फरमा, दुश्मनान इस्लाम के शर से महफूज फरमा, बारिल्लाह जो मरहूम हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो बीमार हैं उन्हें बीमार करबला के सदक़े में शफाए आजिल और सेहत कामिल अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा, रिज़्क हलाल अता फरमा, बारिल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके आमाल अनुसार में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।